साथ भी हो सकता है।
और ये जिंदगी है, ये ऐसी सीलन सजा और बदबूदार है जिसने हमारी पूरी जिंदगी को खा लिया है। एक ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त रविश जिसके तहत हर हवा का धोखा हमें इधर से उधर ले जाता है। एक कब्र जो हमें बुला रही है, वो मौत है जो हमारी जिंदगी के लिए बाहें फैलाए। ये कामयाबी है, यही रहाई, यही आजादी।
ये मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई मैडम।
फिलहाल तो जारी है, मैंने तो अर्ज किया था कि आज इंजीनियर साहब बेहद मसरूफ हैं।
इतना इंजीनियर इंजीनियर न करें मैडम, वो एक सकाफती इदारे के सदर हैं। बिल्डिंग नहीं खड़ी करते जो आप इंजीनियर के रेट लगाए हुए हैं।
आप इत्मीनान रखें जनाब, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मैं आपके टेलीफोन का इंतजार करूंगा।
जी बिल्कुल,
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम।
अरे वाह प्रोफेसर मुकीमी साहब, आप कब से बैठे हैं? आए अंदर आए अंदर आए अंदर आए।
बहुत शुक्रिया।
मैंने कहा था ना उसे किसी तरह डालो।
ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरी किताब का क्या बना है।
नामंजूर हो गई।
नामंजूर हो गई? तो क्या बच्चों बदलना पड़ेगा?
कुछ लिखा नहीं है।
तो क्या मतलब?
देखें, कुछ तखलीकात ऐसी होती हैं जिनमें इस्लाह की जा सकती है, वो जुजी तौर पर नामंजूर होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनका कुछ नहीं किया जा सकता है, वो पूरी तरह से नामंजूर हो जाती हैं। जब कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब पूरी तरह से नामंजूर।
यह क्या बात हुई? मैंने खून से यह किताब लिखी है, अपने पूरे वजूद से लिखी है। तुम तो खुद भी साहिब कलम हो, जानते हो कि एक एक लाइन करके एक किताब लिखना कितना मुश्किल है। मैंने इस किताब पर अपनी पूरी उम्र लगा दी, अब कहा जा रहा है कि मुस्तरद है पूरी तरह से बगैर किसी वजाहत के। जानते हो क्या है, मैंने इस दुनिया का एक नया नजरिया दिया है, एक नई चीज, तुम्हारे बकौल एक ताकतवर चीज, बहुत ही ताकतवर। इसलिए कोई भी चीज मेरी तख्लीक का रास्ता नहीं रोक सकती, मेरी किताब आखिरकार अपना रास्ता तलाश कर लेगी। मैं पागल हो रहा हूं, जानते हो मुझे कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा जैसे
जानता हूं, जैसे किसी बच्चे को पैदा करो और फिर उसे कचरे में फेंक दिया जाए। यह जुमला मैं बहुत सुन चुका हूं। सही है, तुमने एक नई चीज दी है दुनिया को, लेकिन यह नई चीज बहुत भयानक है और तबाहकुन।
ओफो, इस कुरूने उस्ताद की जबान से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। ये किताब एक अदबी तख्लीक है या नहीं, ये ना कहना कि नहीं है, तुम जानते हो क्या है?
हाँ बिल्कुल है, एक अदबी तख्लीक है, लेकिन ये अदबी तख्लीक शैतानी है।
कैसा शैतान साहब? ये किताब मैंने लिखी है, मैंने इसे वजूद बख्शा है, मैं एक इंसान हूँ, एक इंसान, एक फनकार।
ये किताब गैर अखलाकी है।
सबसे पहले तो ये बताओ, तुम्हें किसने इस बात का लाइसेंस दिया कि यहाँ बैठकर ये फैसला करो कि अखलाकियात क्या हैं क्या नहीं है?
मैं कह रहा हूँ, अखलाकियात का तकाजा है, अखलाकियात के भी अपने उसूल होते हैं।
فن کا ایک ہی اصول ہوتا ہے، تخیل، اور کوئی بھی اصول ایک فنکار سے اس کے تخیل کو نہیں چھین سکتا، کبھی بھی نہیں چھین سکتا۔
دیکھیں مقیم صاحب، اگر آپ سرکاری کاغذ اور سبسڈی چاہتے ہیں تو پھر حکومتی اصولوں کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔
آپ براہ کرم نہ کاغذ دیں اور نہ سرکاری سبسڈی دینے کی زحمت کریں۔ میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جسے آپ خود پیسے دے کر خریدیں گے۔ آپ اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی فکر کریں تو بہتر ہوگا، جنہیں کوئی تکیے کی جگہ بھی استعمال کرنے کے لیے پسند نہیں کرتا۔ مجھے صرف تم سے اشاعت کی اجازت چاہیے۔
خدا لعنت کرے، پورے شیطان ہو۔
یعنی اچھی تھی؟
اچھی تھی، تمہاری عمر کا شاہکار ہے۔
خدا کا شکر ہے کہ ایسے ماحول میں اور ایسے برے دن میں تمہارے جیسا ایک بے رحم نقاد تو ملا جس نے قاعدے کی بات کی۔
اچھا، کیا حقیقت میں جانا چاہتے ہو؟ ایک بدترین شاہکار، ایسا جال جس سے شیطان نے تمہارے ہاتھوں بنا۔ یہ تمہارا خلال نہیں ہے مختار، شیطان نے تمہارے دماغ میں ڈالا اور تم نے لکھ دیا۔
میرے شاہکار کی یہ بہترین تعریف ہے لیکن مسترد کر دیا۔
ٹھیک ہی کیا انہوں نے، یقین کرو جب میں کتاب پڑھ رہا تھا تو تم سے ڈر لگ رہا تھا۔ اپنی بیوی سے الگ ہونے کے بعد تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں تمہارے نظریات اتنے غلط ہو گئے؟ اب کیا کرو گے؟
ایک فنکارانہ تخلیق کی اپنی زندگی ہوتی ہے، مصنف سے کوئی تعلق نہیں۔ ہیلو اسماعیل صاحب، میں مقیمی ہوں۔ اسماعیل صاحب
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام،
کیا حال ہے؟
بہت شکریہ۔
اچھا یہ ہے؟
جی
بتایا نہیں، اسے کیوں نہیں چھاپیں گے؟
کیا فرق پڑتا ہے، میں اسے اپنے پیسے سے چھاپوں گا۔ اس کے مصنف کی جگہ بھی گاردال لکھنا، غیر قانونی طور پر بازار بھیجوا دینا۔
ٹھیک ہے، ضرور۔
اس کی تعداد فی الحال 3000 رکھنا۔ سرے ورق کی ڈیزائننگ بھی شاید میں ہی کر دوں اور لا کر تمہیں دے دوں۔
ٹھیک ہے،
اس کی قطع بھی تم خود دیکھ لینا، کسی طرح کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔
بالکل نہیں رہے گی۔
وجود، تقدیر، انتخاب، یوم ولادت، باپ، ماں، یہ سب کچھ جبر کے دائرے میں ہیں، ہم انہیں منتخب نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم اپنے اطراف پھیلی گندگی اور غلاظتوں میں سے وہی غلاظت اور گندگی چنیں جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو؟
تو سر، میری نظر میں آپ کو ہرگز منتخب کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک گروہ بھوک سے مر رہا ہے اور ایک گروہ پیاس سے اور ایک گروہ سحری سے۔ آپ کی نظر میں کیا ان لوگوں نے غربت کو منتخب کیا تھا اور جبر کے دائرے میں بارش اور ایک بیابان خشک، اس کا کیا محصول ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اور وہاں جہاں بارش ہونی چاہیے وہاں نہیں ہوتی ایک قطرہ بھی۔ لیکن جس سوال نے میرے ذہن کو پریشان کر رکھا ہے وہ موت ہے۔ موت کیا ہے، جبر کے دائرے میں ہے یا اختیار کی؟
موت موت ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اتنی آسانی سے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اویڈیپس تھیبس شہر سے بھاگ جاتا ہے تاکہ اپنی مرضی سے مرے، وہ دراصل اپنی موت پر اپنا اختیار چاہتا ہے۔ یس،
السلام علیکم۔
وعلیکم۔
معاف کیجیے گا، میں راستہ لگتا ہے بھول گئی تھی۔
کلاس کا راستہ یا یونیورسٹی کا؟
ایک طرح سے دونوں کا۔
فرسٹ ایئر میں ہو؟
جی۔
تمہارا نام کیا ہے؟
میرا نام لسٹ میں نہیں ہے، مطلب فرسٹ ایئر والوں کو آپ کی کلاس میں جانے کی اجازت نہیں ملی، میں یوں ہی خود سے آ گئی۔
انٹرسٹنگ۔ میری کلاس کی کیا چیز تمہیں اچھی لگتی ہے؟
معاف کیجیے گا، میں اصل میں میری کچھ کلاسز جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ بیچ میں کچھ گھنٹے فضول بیٹھنا ہوتا ہے، تو میں نے سوچا آپ یہاں آ جائیں۔
میرے سوال کا جواب یہی تھا، آج سے تم اس کلاس کی اعزازی طالبہ ہو، جاؤ بیٹھو۔
بہت شکریہ۔
سر، مختلف ادیان و مذاہب میں مرضی کی موت قبول نہیں کی جاتی، بلکہ اسے غلط کہا جاتا ہے، کیوں؟
اگر اس موضوع پر تمہاری اتنی گہری نظر ہے تو تمہارے لیے مذاہب اور ادیان کا نظریہ اہم نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں ان کا تجزیہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بات کتنی مؤثر ہو سکتی ہے، کیا کوئی ہے جو ہمیں بعض چیزوں کی اجازت دے، یا یہ ہم ہیں جو بعض امور کے لیے اپنے آپ کو اجازت دیتے ہیں۔
آج کل کیا کر رہی ہو، ہاسٹل میں ہو یا گھر والے تیرا نہ گئے؟
نہیں بھائی، وہ تو وہیں ہیں، کچھ دنوں ہاسٹل میں رہی، پھر سہیلیوں کے ساتھ ایک گھر لے لیا۔
کیا بات ہے تمہاری، میں تو ابھی ہاسٹل میں ہوں۔
ارے وہ تو فرحاد ہے۔ فرحاد رکو، کام ہے۔
کون ہے؟
فرحاد میرا دوست ہے، ابھی آتی ہوں۔
منگیتر ہے؟
نہیں بھائی، منگیتر کہاں، ابھی آتی ہوں۔ رات میں ہمیں اپنے گھر بلایا ہے۔
کیا مطلب، میں بھی آؤں؟
ہاں۔
برا نہیں ہے؟
نہیں۔
ٹھیک ہے، آؤں گی۔
کیا حال ہے؟
کچھ نہیں۔
کیا پڑھے ہو؟
دیکھ نہیں رہی ہو؟ ہیچی بہیچی، سب آگے اگر اسے پڑھو تب بھی لگتا ہے کہ کچھ نہیں پڑھا۔
میں نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے۔
پڑھنے کو تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر جانتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں تو ایک گولی اپنے سر میں مار کر کے خود کو۔
پریشان نہ ہو، تمہیں بھی عادت ہو جائے گی۔ اور ہاں، فرحاد صاحب وہ واحد اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں مقیمی سر نے 100% مارکس دیے ہیں۔
واقعی؟
یہ کسے اپنے ساتھ لائی ہو؟
بتایا تو تھا، رانا ہے میری پرانی سہیلی، بچپن میں ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔
اچھا، بچپن میں؟ بچپن بیوقوفیوں کا زمانہ، گندگی میں ہاتھ پیر مارنے کا زمانہ، ماں باپ کے غلامی کا زمانہ۔
لیکن مجھے بچپن کا زمانہ بہت پسند ہے۔
دیکھیں میڈم، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تم نے اس کتاب کو اچھی طرح سے نہیں پڑھا، یا شاید صحیح طور پر سمجھی نہیں، یا شاید تمہارے پاس دماغ ہی نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ عقل سے پیدل ہو۔
میں عقل سے پیدل ہوں؟ میں عقل سے پیدل ہوں یا تم؟ اس گندگی میں رہتے رہتے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔
سنو میڈم، اس کمرے کو چند منٹوں میں صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اسے صاف نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کمرہ اس دنیا کا آئینہ ہے جہاں ہم سب رہتے ہیں،
जहाँ हम जिंदगी गुजारते हैं, हम इसी गलीज दुनिया में हाथ पैर मार रहे हैं। सुनो,
पेज नंबर 7 पैराग्राफ 6, मैं खड़ा हुआ, खिड़की खोली और शहर में फैली हुई कसाफतों पर एक नजर डाली, जिसमें हजारों बच्चे और औरतें अपनी शराब जैसी खोखली आरजुओं को हासिल करने के लिए एक दूसरे का गोश्त नोच रहे हैं। मैं इस शहर को पसंद नहीं करता, नहीं, इस दुनिया को पसंद नहीं करता, और हर जानदार को जो अपनी घिनौनी हरकतों से अपनी बका के लिए हाथ पैर मार रहा है पसंद नहीं करता। कीचड़ों में धंसता जा रहा हूँ और अपने आखिरी जमजमे को सुन रहा हूँ, जो दर्द आलम के खात्मे और कामयाबी का नगमा है, आज़ादी की खुशी, पुरसुकून मौत, पुरसुकून मौत। आहिस्ता से मुझे अपनी आगोश में ले ले।
बहुत अच्छा था,
खूबसूरत था, बस इतना ही। ये किताब सही तरह से जीने का सलीका सिखाती है, इसका मतलब समझती हो? यानी अपनी मौत का इंतखाब। हमारी पैदाइश भी हमारे हाथ में नहीं है, अपने घराने का इंतखाब भी हम नहीं करते। अगर मेरे हाथ में होता तो मेरा दिल चाहता कि मुकमी सर मेरे बाप होते। मैं 16 साल का था कि घर से भाग गया, यहाँ तक कि मेरी माँ भी मर गई। मेरा बाप गया और बच्चा पैदा करने वाली एक और मशीन ले आया। मेरी ही उम्र की कोई लड़की थी, 13-14 बरसों से उसकी कोई खबर नहीं है। उन्हीं हालात में थकन से चूर अचानक एक चौराहे पर मुझे ये किताब बिकती नजर आई। मुस्तार नाम से लिखी गई थी। बहुत तलाश किया और आखिरकार इस किताब को लिखने वाला मुझे मिल गया। मुकमी सर, वो मेरी मंजिल है, वो मेरा सब कुछ है। उन्हीं की वजह से मैं यूनिवर्सिटी गया, उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और मैंने भी यूनिवर्सिटी छोड़ दी। देखो मैडम, अगर वाकई समझना चाहती हो मैं क्या कह रहा हूं, तो इस किताब को तो सिर्फ एक बार फिर इस किताब को अच्छी तरह से पढ़ लो। उस वक्त समझ जाओगी किस गंदगी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं।
हेलो, सलाम वालेकुम। अब्बा, आपने हॉस्टल फोन किया था?
नहीं।
ओफो, कितने फजूल हैं ये लोग। अब्बा, आपने सहेली के घर गई थी, देर हो गई, वहीं रुक गई थी, चार्जर हॉस्टल में छूट गया था। अब्बा, मेरी क्लास शुरू हो चुकी है, क्लास से आने के बाद आपको फोन करूंगी, ठीक है ना? ठीक है, खुदा हाफिज।
सलाम अलैकुम। माफ कीजिएगा, एक सवाल आपसे पूछ सकती हूँ?
पूछो।
ये जो किताब हीच बेहीच है, उसे आपने लिखा है?
ये जानना तुम्हारे लिए अहम है?
बहुत ज्यादा।
क्यों?
मुझे ये किताब बहुत पसंद है।
तुमने तो कहा था कि यूं ही मेरी क्लास में आती हो।
झूठ कहा था, असल में माफ कीजिएगा, आपने वो किताब जाली नाम से लिखी है ना, मैंने सोचा शायद सबके सामने अगर कहूँ कि उस किताब की वजह से आई हूँ तो आप
तो चालाक भी हो।
अब आप ही देखें।
हाँ, तो क्या जानना चाहती हो?
असल में मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके ख्याल में
जिंदगी उतनी ही बकवास है जितनी आपने उस किताब में लिखी है।
अगर मेरे इल्म के दायरे में जितनी भी तलखियां मौजूद हैं उन्हें अपनी किताब में लिख देता तो पूरी दुनिया में आग लग जाती। मैंने तो सिर्फ अपनी तलखियों का एक मामूली हिस्सा इस दुनिया तक पहुंचाया है।
ठीक है, लेकिन क्यों?
क्योंकि सिर्फ अहमक लोग इस दुनिया में जीते हैं। जो भी ये समझ जाता है कि इस दुनिया में उसे कैसे बेवकूफ बनाया गया है वो यहाँ नहीं रहेगा।
हजार बातें सोचती हूँ, हजार काम एक साथ करना चाहती हूँ, एक साथ एक वक्त में।
अच्छी बात,
सच कह रहे हैं? मैं तो समझती थी कि अगर आपको ही पता चलेगा तो आप कहेंगे कैसी बेवकूफ लड़की है। सबसे पहले तो हॉस्टल छोड़ना है। सवाल जवाब और देर से क्यों आई, कहाँ थी वगैरह से मैं थक गई हूँ।
अपनी जिंदगी में वही काम करो जिसमें ज्यादा मजा आए। अरे क्या हुआ?
कुछ नहीं, आपकी बातों पे गौर कर रही थी।
चलते चलते नहीं सो सकते क्या?
असल में आपकी बातें बहुत गहरी हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक नया बाप खुल गया हो। सुनो, ये अजूबा कहाँ से मिल गया तुम्हें?
कौन? फरहाद, उसने मुझे ढूंढ निकाला।
यूनिवर्सिटी में?
नहीं, नाली से।
बको मत, मैं संजीदा हूँ।
सच कह रही हूँ, यूनिवर्सिटी में एक लाओबाली लड़के की आशिक हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, सूरत शक्ल बातचीत उस पर जान देती थी। सबसे कहता था कि मंगेतर हूँ। मैंने भी यकीन कर लिया, उसके साथ घूमने जाती थी। मेरे घर वाले समझ गए और तहरान आ गए, खूब हंगामा किया। कहने लगा तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। मैंने यकीन कर लिया, उसके लिए घर वालों के खिलाफ खड़ी हो गई। एक रोज क्लास नहीं थी तो उसके घर चली गई। बहुत बेल बजाई, उसकी गाड़ी खड़ी थी लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार वापस आ गई अपनी पक्की दोस्त के साथ। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी, तुम सोच भी नहीं सकती। गली की दुकान से एक पैकेट ब्लेड खरीदे और उसके घर के सामने आकर अपनी नसें काट ली। मेरी हालत बिगड़ गई थी, नाली में गिर पड़ी। फरहाद उसका दोस्त था। ये वाक्या 5 साल पहले का है, अब मैं उसकी जानी दुश्मन हूँ। मुझे उसने नाली से निकाल कर अस्पताल पहुँचाया। आँख खुली तो फरहाद को देखा, उससे नजरें मिलते ही सुकून मिल गया। मुझसे कहा कि तुम्हें उस नाली में मरने के लिए छोड़ सकता था लेकिन उस कमीने के लिए नहीं मरने दूंगा। मरना है तो किसी अहम चीज के लिए मरो जो उसके लायक हो।
यानी क्या मतलब?
अब तक व्हील के ऑपरेशन के बारे में कुछ सुना है तुम लोगों ने?
नहीं।
मेरी नजर में ऐसी चीज के लिए मरना चाहिए कि जिसके एहतराम में टोपी उतारी जा सकती हो।
वो क्या चीज है?
खुद मौत। अपनी किताब खोलो, पेज नंबर 27 पढ़ो। अपने बेड पर लेटकर छत को गौर से देख रहा था। छत आहिस्ता आहिस्ता नीचे उसकी तरफ आई। वो छत की तरफ नहीं गया, प्रवास कर रहा था। पर निकल आए थे मौत और जिंदगी के माबेन आखिरी सांस ली और अब वो पुरसकून हो चुका था।
अच्छा था है ना, कम से कम एक कप चाय पीने के लायक तो था।
मैं ले आती
हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं लाती हूँ।
जानते हो फरहाद, तुमने अपनी कहानी में जिस दर्द और रंज का जिक्र किया है वो मुझे पसंद आई।
वाकई?
हाँ हाँ वाकई। मेरे ख्याल में इख्तियार और मुस्तकबिल के इंतखाब का हक एक इंसान की ताकत का उरूज है। लड़की ढूंढो नहीं कब नहीं मिलेगा, चार ग्लास में निकाल के ले आओ, परेशान मत हो।
जरूर। ये लीजिए।
शुक्रिया।
शुक्रिया
सर। एक सवाल
पूछो।
सर आपकी राय में रात की इस तारीकी के पीछे क्या है?
तारीकी?
और उस तारीकी के पीछे?
वहां भी तारीकी, तारीकी सिर्फ तारीकी।
तो फिर इतनी तारीकियों में कैसे जिंदा रहा जा सकता है?
मैं तुम्हारी बात समझ गया। देखो एक ऐसा रास्ता तलाश करना होगा जिससे तुम इस तारीकी पर फतेहयाब हो जाओ। लेकिन आज के समाज में एक कमजोर और एक मामूली शख्स भी एक काम करके हीरो बन सकता है। मिसाल के तौर पर मौत पर कंट्रोल करके, मौत उसे लगाम लगाकर और मौत पर काबू पाकर खुद हीरो बन सकता है।
खुद हीरो बन सकता है।
और इंतखाब तो मौत करती है, मरने वाले मौत का इंतखाब नहीं करते हैं। वाह वाह। वालेकुम सलाम मिस मारूफी, गलत नाम तो नहीं ले रहा हूँ?
आप गलती कहाँ कर सकते हैं,
कभी कभी लेकिन ज्यादा नहीं।
अरे माफ कीजिएगा, आप तो मसरूफ थे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया।
नहीं नहीं नहीं, आराम से बैठो, अगर काम करना होता तो यहाँ ना आता। बैठो।
मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आपकी एक नई तख्लीक में रुकावट बनूं।
तख्लीक के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता, कोई भी।
आप हमेशा यहाँ आते हैं?
हाँ, ये मेरी पसंदीदा जगह है, शानदार और पुरसुकून।
मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, दोस्तों ने बताया था कि आप हमेशा यहाँ आते हैं, इसीलिए मैं भी आ गई।
क्यों?
सर मेरे जहन में बहुत से सवाल हैं, हजारों सवाल। आपकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया है। बस मेरा दिल चाहता है कि आपको देखूं, आपकी बातें सुनती रहूं। जब मैं यहाँ आ रही थी तो किसी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, मैंने कहा सर के पास जा रही हूँ, मुकीमी सर से मिलने जा रही हूँ। उसने कहा नहीं जाओ उनके पास, जहन खराब होगा, परेशान हो जाओगी, सर मनफी ख्यालात के हामिल हैं।
तो तुमने क्या कहा?
छोड़े अब।
नहीं मैं सुनना चाहता हूँ, कहो।
मुझे शर्म आती है बता दे।
शर्म आती है? ऐसी लगती तो नहीं।
सर मुझे अपनी खिदमत करने दें।
क्या, कैसी खिदमत?
पता नहीं, अगर मैंने आपका कोई काम ना किया तो मैं मर जाऊंगी, खुदा के लिए।
मुझे किसी खिदमत की जरूरत नहीं है।
अभी क्लास है?
हाँ है। तो
अपने घर की चाबी मुझे दे दें।
क्या मतलब?
प्लीज दे दें।
और अब बात करते हैं इश्क की। इश्क जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके बगैर इंसान की जिंदगी की कोई माने नहीं है।
और एक ऐसा सुतून है जिस पर यह कायनात टिकी हुई है। लेकिन मेरी नजर में यह इंसानों की जानिब से बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। इश्क कोई माना नहीं है, कोई वजाहत नहीं है। हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हम खुद अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। जिंदगी झूठ और गंदगी से भरी है।
हेलो फरीबर्स, तुम हो? हाँ ठीक ही हूँ, नहीं बस थक गया हूँ। यूनिवर्सिटी में हूँ, घर जाने का दिल नहीं चाह रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारे घर आऊँगा तो आधी रात हो जाएगी, अपने ही घर चले जाऊँगा।
इजाजत है सर?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
बैठो। खुश आमदेद।
मुझे मालूम था आप यहाँ मिल जाएंगे।
और चूंकि मुझे मालूम था कि तुम यहाँ आओगी, इसलिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। ये लो।
बहुत शुक्रिया, लेकिन किस लिए?
इसे खोलो। बरसों बीत गए, अच्छे खाने की खुशबू मेरे घर से नहीं उठी थी। पूरा घर चमक रहा था। अपनी बीवी के मरने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो घर फिर से घर बनेगा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं राना। पसंद नहीं आया?
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसी कोई चीज सोफे में देंगे।
क्यों, रंग नहीं पसंद आया?
नहीं नहीं, मैं सोच रही थी कि आप कुछ मुख्तलिफ तरह का तोहफा देंगे।
किस तरह का?
क्या पता, मिसाल के तौर पर कोई किताब या अपना कोई मकाला। लेकिन ये तो हैरान कौन है।
तुम्हारे हाथ में जायका बहुत है, कितने मजे का खाना बनाया था
सर।
हाँ?
मुझसे बात करें।
किस बारे में?
अपनी किताब के बारे में।
इतने खूबसूरत दिन में उस किताब के बारे में बात कर अच्छा होगा।
मैंने अपने दोस्तों के साथ जलसा रखा है, तय ये हुआ है कि हफ्ते में एक बार आपकी किताब पढ़ी जाए। और अब मैं चाहती हूँ कि आप इस किताब पर दस्तखत कर दें।
ये मेरा फोन नंबर है, अगर किताब की कोई चीज या बात समझ में ना आए तो मुझे फोन कर सकती हूँ। तुम लोग कितने भाई बहन हो?
जी
मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत खुश हूँ कि तुम जो क्लास में आई हो। जैसे ही तुमने मेरे घर में कदम रखा वहाँ खुशबू बिखर गई मेरे घर की रौनक पलट आई। बरसों से मैंने अपने घर को इस तरह नहीं देखा था। चहलकदमी करें।
ख्याल बुरा नहीं
सर।
मुझे सर न कहो।
आप मेरे लिए हमेशा सर हैं, ये जान लें। आपने अपनी किताब से, अपनी बातों से जिंदगी की हकीकत मुझे दिखा दी।
बहुत खूबसूरत जगह है, कितना अच्छा मौसम है, और आपने भी मिस रायना अपने वलवले से, अपनी खूबसूरती से जिंदगी की हकीकत मुझ पर वाजे कर दी।
लेकिन मेरा रास्ता तो गलत था।
बरसों बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि सांस ले रहा हूँ। देर तो नहीं हुई?
वालेकुम सलाम। नहीं,
सैंडविच खरीद लिया अपने तालिबे इल्मी का जमाना याद करके, वो यादगार दौर जब मैं अनीस अपनी बीवी के साथ, वो क्लासोलो थी मेरी, मुझे याद है हम लोग पार्क में बैठकर सैंडविच खाते और कोल्ड ड्रिंक पीते थे। कितना अच्छा दौर था, लेकिन अब और अच्छा है। लो।
शुक्रिया, दिल नहीं चाह रहा है।
क्या हुआ? कुछ दिनों से खाती पीती नहीं, क्यों? कहीं बीवी को याद करने की वजह से तो नाराज नहीं है?
नहीं नहीं नहीं, दिल नहीं चाह रहा है सर। आपने यहाँ तो लिखा है।
सौ बार मैंने कहा कि मुझे सर न कहो। फिलहाल ये किताब अपने बैग में रखो और सैंडविच खाओ। लो।
आज मुझे घर ढूंढने जाना है।
किस लिए?
थक गई हूँ, हॉस्टल छोड़ना चाहती हूँ।
लेकिन जानती हो कि यह काम कितना खतरनाक हो सकता है?
क्यों
भाई, एक अकेली लड़की इस बड़े शहर में। नहीं, तुम उसी हॉस्टल में रहो तो बेहतर है, इस तरह मुझे भी इत्मीनान रहेगा, वरना हजार तरह की फिक्र होगी।
पहली बार जब मैंने आपसे ये कहा था तो आपका जवाब मुख्तलिफ था। आपने कहा वही करो जिसे करने में ज्यादा मजा आए।
भाई उस वक्त तुम सिर्फ मेरी शागिर्द थी, लेकिन अब।
लेकिन मैंने आपकी इसी बात की वजह से माँ बाप की मुखालिफत की।
सच में?
और क्या।
मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जो ये सोचता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जज्बात एक तरफा हो और तुम सिर्फ उस किताब की वजह से मुझे पसंद करती हो। मतलब तुमने एक मेरी बात की वजह से अपने माँ बाप की मुखालफत कर दी। मेरे लिए बहुत अहम है ये बात। क्या हाल है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है?
कुछ नहीं,
मैं ऑर्डर देना चाहता था लेकिन पता नहीं था कि तुम क्या लोगी।
भूख नहीं है। आते हुए रास्ते में लोगों को देख रही थी, मुझे उन सब से कराहत महसूस हो रही थी, उनकी हिमाकतों से, उनकी उस जहालत से जिसमें हाथ पैर मार रहे हैं।
सचमुच तुम्हारी तबीयत ठीक है?
हाँ।
छोड़ो इन सबको, इंसान है।
इंसान है, ऐसे इंसान या जानवर जिन्हें जबरदस्ती गलत तमद्दुन पहना दी गई है, सर जंजीरों से हाथ पैर बांध दिए गए हैं।
तुमने फिर वो किताब पढ़ी? मैंने मना किया था कि एक बार पढ़ ली वही काफी है।
मैंने इस किताब के मुसन्निफ के ऐसे से तुमसे गुजारिश की थी कि उसे न पढ़ना।
क्यों?
जरा अपनी हालत देखो, समझ जाओगी।
आप बदल गए हैं सर।
तुम भी बदल गई हो। देखो, ये जिस किताब की तुम पूजा करती हो उस दौर से ताल्लुक रखती है जब मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई थी बिला वजह, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। मैं बीमार हो गया था, सबसे नफरत महसूस हो रही थी, हर एक से इंतकाम लेना चाहता था, हर चीज से, हर इंसान से। इसीलिए मैंने किताब लिखी। ये किताब लिखी ताकि जिंदा रह सकूं, ताकि सुकून मिल सके। तभी तुम मिल गई। तुम मिली और मुझे अपना सब कुछ मिल गया। खोया हुआ यकीन, हाथ से छूट जाने वाली जिंदगी की डोर, इश्क। देखो राना, मैं डिनर के बाद कहना चाहता था लेकिन तुमने अभी कहने पर मजबूर कर दिया। मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं।
क्या?
हाँ, जानता हूं कि मैं तुमसे बड़ा हूं लेकिन
तुम ही तो कहते थे कि पुरानी रवायतों और अर्जुओं को जला देना चाहिए। तुम ही तो कहते थे कि मिल्कियत और मालकियत को खत्म कर देना चाहिए। शादी सिर्फ एक बहाना है जिसके सहारे लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील को कानूनी शक्ल देते हैं। शादी भी उन दसियों जंजीरों में से एक जंजीर है जिनसे इंसानों को जकड़ दिया गया है। उसका मकसद यह है कि इंसान हमेशा बाकी रहने की अपनी आरजू, अपने बच्चों की शक्ल पूरी करे और खुद से चाही हुई मौत से भागता रहे।
ओफो, छोड़ो इस किताब को।
तुम कौन होते हो कि जो मुझसे ये कहो कि मैं
इस किताब को लिखा है और अब कह रहा हूँ कि ये सारी बकवास किताबों में ही ठीक है, असल जिंदगी में नहीं।
किताब के बारे में तमीज से बात करो।
मैंने ये किताब लिखी है राना।
अदबी तख्लीक अपने खालिद से अलग शिनाख्त रखती है।
खत्म करो ये बकवास, मैं ये सब सुनना नहीं चाहता, समझे तू?
लेकिन इन्हीं बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी है, मेरे ख्यालात, मेरा सब कुछ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं इस किताब के मुसन्निफ को चाहती हूँ। देखो, हीच भी हीच, तुम वो नहीं हो।
नाना, हम इस मौजू पर बात करेंगे।
छोड़ दो मुझे, मुझे तुमसे घिन आती है। तुम एक झूठे इंसान हो। बड़ा अच्छा किया जो अपने असल नाम से किताब नहीं लिखी। तुम इस तहरीर के लायक नहीं हो।
राना, राना!
हर चीज में वहशत भरी है, शहर पर खामोशी छाई है। ऐसी दुनिया को देखने के लिए पैदा ही क्यों होते हैं लोग? जिंदगी का क्या फायदा? मौत ही इन ढेर सारी तारीखियों से फरार का वाहिद रास्ता है। मौत एक पेचीदा मौजू है जिसे इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। हमें हमेशा अल्फाज के नहा मानी की तलाश में रहना चाहिए। और फिर दुनिया की रगो पै में ठंडक समा गई और वो गोया किसी लाश से लिपट गई हो। अपने अतराफ पर एक नजर डाली और हसरत यास से तमाम चीजों को गौर से देखा। उसकी बस यही ख्वाहिश थी। किसी को बुलाया है?
नहीं। राना, क्या हुआ?
फरहाद, वेलों के ऑपरेशन का किस्सा क्या है?
वेल वो वाहिद मखलूक है जो थक जाने और गमजदा हो जाने के बाद अपनी मौत का इंतखाब करती है, चाहे वो उनके बेहतरीन अय्याम ही क्यों ना हो। मेरे ख्याल में खुद से मौत के इंतखाब के मामले में वो पेशगाम है। वो इकट्ठा होती हैं और फिर एक साथ साहिल की तरफ बढ़ जाती हैं ताकि खुद को आजाद कर लें, एक साथ मर जाएं। वो ये काम इसलिए करती हैं ताकि जलील और खोखली जिंदगी का मजाक उड़ाएं, जबकि वो जिंदा रह सकती हैं, जिंदा रह सकती हैं। और फिर कुछ लोग उन्हें जबरदस्ती दरिया में डालना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी मर्जी की मौत के सिलसिले में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं।
देखो राना, मैं चाहती हूँ।
नहीं, میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود فیصلہ کرے۔
میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے اب سمجھ میں آیا ہے کہ اس بیکار کی دنیا میں ہر چیز بیکار ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔
تم مطمئن ہو؟
ہاں۔
زندگی ذلت و خواری کے ساتھ موت کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ موت مدہوش کن حسن دنیا پر لٹا رہی تھی تاکہ حقیقت کے پیاسے اس کی بوندوں سے اپنی پیاس بجھا سکیں اور اس کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ پہلے تم نگین، پھر میں، اور پھر رانا۔
مدہوش کن حسن دنیا پر لٹا رہی تھی۔
فلور بھی چیک کر لو، تمام کاغذات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اجتماعی خودکشی کی ہے۔ فائل مکمل ہونے کے بعد تحقیقاتی افسر کے سپرد کر دو۔
مجھے بلایا گیا۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم۔
مجھے فون کر کے یہاں بلایا گیا ہے۔
آپ کون صاحب؟
میں مقیمی ہوں۔
ہمارے ساتھ آئیے۔
دیکھو اس وقت یہاں کی ایک ایک چیز
آپ یہی
روکیں، بہت سے نوٹ کرو، بہت اہم ہے، ہر چیز کو نوٹ کرو۔ دوسرے فلور بھی دیکھ لو۔
مقیمی صاحب آ گئے ہیں۔
مقیمی صاحب
جی،
یہ ٹیلی فون نمبر آپ کا ہے؟
جی ہاں،
ہم نے آپ کو فون کیا تھا۔ مقیمی صاحب، یہاں تین جنازے پڑے ہیں، دیکھیں آپ ان کو جانتے ہیں؟
لاش
میرے ساتھ آئیں۔
فراز سعودیان،
پہچانتے ہیں؟
میرا ہی اسٹوڈنٹ تھا۔ نگین، نگین میری یاد،
आप कुछ और बता सकते हैं?
Ha ha ha!